मैं हार गई कहानी संग्रह पृष्ठ 26। यह मनु जी का प्रथम कहानी संग्रह है जिसमें मैं हार गई के साथ गीत का चुंबन, दीवार बच्चे और बरसात, ईसा के घर इंसान, पंडित गजाधर शास्त्री, जीती बाजी की हार, कील और कसक, एक कमजोर लड़की की कहानी, दो कलाकार, सयानी बुआ, अभिनेता, शमशान शीर्षक कहानियां संग्रहित है। शीर्षक ईसा के घर इंसान। ईश्वर धर्म समाज कुंठा और अकेलेपन के प्रति विद्रोह जनित कहानी है। आज भी समाज रूढ़िग्रस्त है, जबकि हम 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं। कितना विभत्स लगता है जब धर्म की आड़ में मुस्लिम समाज में पुरुष को बहुविवाह करने की छूट सी मिल जाती है। रोज सैकड़ों तलाक होते हैं क्योंकि धर्म इसकी स्वीकृति देता है। प्रस्तुत कहानी में गिरजाघर में संचालित कॉलेज में टीचर्स, फादर्स, मदर एवं लड़कियां रहती हैं। कॉलेज के नियम कानून बड़े सख्त थे। लड़कियों को हर बात में रोक टोक लगी रहती थी, जिससे लड़कियां खिन्न एवं विद्रोही हो गई थी। मुक्ति के लिए अधिकांश लड़कियां छटपटाती रहती हैं। उदाहरण इन्वर्टेड कॉमापन। मैं अपनी जिंदगी के इस रूप को चर्च की दीवारों के बीच नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, आदमी की तरह रहना चाहती हूँ। मैं इस चर्च में घुट घुट कर नहीं मरूंगी, मैं भाग जाऊंगी, भाग जाऊंगी। दंड के तौर पर ऐसी कॉलेज की लड़कियों को फादर के अलौकिक दर्शन के लिए बलात्कार का शिकार होना पड़ता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ मन्नू भंडारी, मैं हार गई कहानी संग्रह, कहानी ईसा के घर इंसान, अक्षर प्रकाशन, प्रथम संस्करण 1957, पृष्ठ 17। अगला शीर्षक गीत का चुंबन। इस कहानी में कनिका अनदेखी अनचाही बेड़ियों से बंधी सिसकती रहती है। वह संस्कारों से बंधी होती है और जीवन को कष्ट देती रहती है। संस्कारों से बंधी वह प्रेमी निखिल के स्पर्श को पाप समझती है। कनिका को ज्यों ही निखिल स्पर्श करता है, वह निखिल को थप्पड़ मार देती है। निखिल अपमानित होकर दुखी मन से कनिका को छोड़कर दूर चला जाता है। कनिका के हृदय में निखिल छाया रहता है, वह उसे भूल नहीं पाती। सिसकती रोती सारा जीवन उसका इंतजार करती रहती है। हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक मानसिक अंतर्द्वंद की कहानियों की प्रचुरता देखने को मिलती है। पृष्ठ 27। अगला शीर्षक जीती बाजी की हार। आधुनिक समाज में नारी समय रहते विवाह न करके अपने को शारीरिक दुख के साथ साथ मानसिक दुख भी देती है। जब से नारी स्वयं अपना जीवन साथी चुनने लगी है, तब से वह एक संपूर्ण पुरुष की कल्पना करने लगी है। वह एक पूर्ण पुरुष चाहती है जो उच्च पदासीन हो, सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी हो। अंग्रेजी की एक कहावत है, नोबडी इज परफेक्ट। इस प्रकार से यदि आधुनिक नारी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की तलाश करने लगे तो शायद वह जीवन भर कुंवारी ही रह जाएगी। उसके हाथ केवल अकेलापन ही लगेगा। इसमें आशा, नलिनी और मुरला नामक तीन आधुनिक नारियों की अलग-अलग व्यथा है, जो आपस में घनिष्ठ सहेलियां भी है। कहानी का मूल प्रतिपाद्य निम्नवत है। नारी में वात्सल्य की लालसा रहती है, जो इस कहानी का मूल स्वर है। नारी आज हर क्षेत्र में उन्नति कर रही है। जीवन उसका हर प्रकार से संपन्न ही क्यों ना हो, परंतु उसके हृदय में वात्सल्य भावना समाप्त नहीं होती। वह माँ बनना और कहलाना पसंद करती है। माँ बनना प्राकृतिक देन है। प्रकृति के विरुद्ध जाने से नारी को सहज शांति नहीं मिल सकती। इस कहानी में लेखिका मातृत्व पर नारी व्यक्तित्व को न्योछावर कर देती है। वात्सल्य उसका स्थायी भाव है। मातृत्व के बिना नारी सहज सुखी नहीं हो सकती। यह जीती बाजी की हार है, जिसमें मुरला शर्त को जीत गई किंतु उसकी हार हो गई। मुरला सोचती है, काश वह शादी कर लेती तो मातृत्व का सुख पाती। अगला शीर्षक एक कमजोर लड़की की कहानी। इसमें एक कमजोर लड़की की कहानी प्रस्तुत की गई है, जो अपनी माँ की मृत्यु के पश्चात अपना बचपन खो देती है। दुख और उपेक्षा से वह प्रौढ़ा का रूप धारण कर लेती है। उसकी इच्छाओं का दमन होने लगता है, जिससे वह एक कमजोर लड़की बन जाती है। उसका आत्मविश्वास मर जाता है, वह सहमी और उदासी सी हो जाती है। पाठक के हृदय में ऐसी युवतियों के प्रति सहानुभूति जगती है जिन नारियों को प्रारंभ से ही दबाकर रखा जाता है। वे भावना शून्य हो जाती है, दूसरे उनके जीवन की डोर खींचते रहते हैं और वे एक कठपुतली के समान नाचती रहती हैं। अत्यधिक अनुशासन से भी मनुष्य यंत्रचालित सा हो जाता है। सयानी बुआ के माध्यम से यह बात स्पष्ट की गई है कि परिवार में अधिक तानाशाही न की जाए। बड़े बुजुर्गों के नियम कानून अधिक सख्त हो तो परिवार के छोटे सदस्य मनोरोगी हो जाते हैं। अगला शीर्षक अभिनेता। इस शीर्षक से ही प्रकट है कि जीवन का एक अभिनय होता है। उसमें एक अभिनेत्री अभिनय करके निजी जीवन में सामान्य रहती है और सच कहती है। उसका नायक अभिनेता न होते हुए भी अभिनय करता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, शादीशुदा होकर भी। पृष्ठ 28। अपने को कुंवारा बताकर अभिनेत्री रंजना के हृदय से शरीर से खेलता है। जब रंजना को सच मालूम होता है कि जिसे वह प्रेम करती है वह झूठ की नींव पर खड़ा है, तब रंजना असहनीय पीड़ा से जूझने लगती है। अगला शीर्षक शमशान। यह मानवीय प्रेम पर आधारित कहानी है। कहानी का नायक पति के रूप में अपनी पत्नी की मृत्यु पर ऐसा करुण चित्कार करता है कि पूरा शमशान चित्कार कर उठता है। मनु जी की कहानी शमशान में शमशान का मानवीकरण किया गया है। यहाँ वैवाहिक जीवन में स्त्री और पुरुष के संबंधों को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। शमशान में इंसान नहीं, उसका शव लाया जाता है। उस शव पर रिश्तेदार पहचान वाले विलाप और रुदन करते हैं। लेखिका ने शव पर विलाप करने वालों की कथनी और करनी में अंतर दिखाया है। शमशान और पहाड़ी के संवाद के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण लेखिका ने किया है। शमशान सोचता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी निधि प्रेम है, किंतु यथार्थ में अनुभव करता है कि एक युवक 3 बार अपनी 3 पत्नियों को लेकर शमशान आया। वह हर बार विलाप करते हुए कह रहा था कि वह इस पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तीसरी बार वह दावे के साथ कह रहा था कि तीसरी पत्नी से भी उसका प्रेम था। पहली उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी, तो तीसरी प्रिया, मित्र और पथ प्रदर्शिका थी। कुछ दिन बाद वह फिर चौथी शादी की तैयारी करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि शव पर विलाप करने वाले अपनी बात भूल फिर माया मोह की ओर अग्रसित हो जाते हैं। अगली शीर्षक कहानी दीवार, बच्चे और बरसात। इस कहानी में पति पत्नी के बीच में विराजमान कटुता, झगड़े, संबंध विच्छेद समाज में उपहास के कारण बनते हैं। समाज हंसता है, मुफ्त का मनोरंजन करता है। पुराने संस्कारों और रूढ़ियों को तोड़ने का जो फैशन चल रहा है वह अत्यधिक जोर पकड़ता जा रहा है। अगली कहानी पंडित गजाधर शास्त्री। इस कहानी में लेखकों के अहंकार पर व्यंग किया गया है। आज हर छोटा मोटा लेखक खुद को महान साहित्यकार समझने लगता है, स्वयं के द्वारा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने लगता है। झूठे अहमी साहित्यकारों पर व्यंग्य करते हुए कहानी अहंकारग्रस्त कवि की विडंबना पर लिखी गई है। अगली कहानी कील और कसक। यह एक अस्तित्ववादी कहानी है। पति द्वारा उपेक्षित रानी अंततः पराए पुरुष शेखर की ओर हाथ बढ़ाती है। शेखर पहले उसे स्वीकारता है, बाद में समय के अभाव के कारण उसे दूर रखता है। वाकयुद्ध होने लगता है। आंतरिक पीड़ा की यह कहानी ऐसा अद्भुत दस्तावेज है, पृष्ठ 29, जिसमें नारी का अकेलापन ही उसके दर्द का कारण है। अगली कहानी दो कलाकार। इसमें दो सहेलियों की कहानी है। सहेलियां हैं चित्रा और अरुणा। एक का कार्य क्षेत्र समाज सेवा है तो दूसरे का चित्रकला। परस्पर एक दूसरे के कार्य को छोटा सिद्ध करने के लिए वे एक दूसरे का व्यंग करती है, जो आपसी ईर्ष्या भाव को व्यक्त करने वाला तथ्य है। चित्रा और अरुणा बीए अंतिम वर्ष में पढ़ रही हैं। पिछले 6 सालों से उनकी मित्रता क्रमशः प्रगाढ़ होती चली जा रही है, जबकि उनके आचार विचार, रहन सहन, रुचि आदि में जमीन आसमान का अंतर है। चित्रा चित्रकार और अपनी इच्छाओं को, अंतर्मन की बातों को चित्र बनाकर पूर्ण करती है, जबकि अरुणा समाज सेवी है। वह अपनी इच्छाओं को, अंतर मन की बातों को समाज के दीनहीन लोगों की सच्ची सेवा करके पूर्ण करती है। एक दिन चित्रा ने अरुणा को अपना ताजा चित्र दिखाया, जहां आज की दुनिया प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त हो रही थी। उसकी प्रतीकात्मक चित्र रेखाओं से अरुणा कन्फ्यूज्ड हो जाती है और चित्र को समझ नहीं पाती। अरुणा निम्न तबके के गरीब दलित लोगों के बच्चों को शिक्षित करती है। अरुणा चित्रा के कन्फ्यूज ग्रस्त चित्रों की आलोचना करती रहती है। परीक्षा के बाद दोनों को ही भविष्य में कुछ बनना था। बाढ़ के सजीव चित्रों की प्रदर्शनी में चित्रा प्रथम पुरस्कार पाकर समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, जबकि अरुणा बाढ़ग्रस्त विभीषिका से पीड़ित दो बच्चों को पालती है। चित्रा विदेश में अपने चित्रों के माध्यम से धूम मचाती है और दुनिया में अपनी छाई होने का दंभ करती है, जबकि अरुणा दोनों बच्चों को पालकर यथार्थ में कर्म करती है। कोरी भावुकता में बहकर जीवन के सत्य को नहीं खोजा जा सकता। जीवन के सच्चे कर्म ही निर्मल आनंद दे सकते हैं। अहम की तुष्टि के लिए भले ही व्यक्ति को बड़ा चित्रकार, बड़ा पत्रकार समझ ले, परंतु यथार्थ में ठोस मानव सेवा ही प्रशंसा योग्य है। यही जीवन का मूल्य सत्य और निर्मल आनंद है। संग्रह की शीर्षक कहानी मैं हार गई में लेखिका ने परंपरागत नैतिक धारणाओं के प्रति व्यंग और छींटाकशी की है। नेताओं के ऊपर भी पैनी दृष्टि डाली गई है। यह कहानी उनकी असलियत को समाज के सामने लाने का कार्य करती है।